باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام قیام سے قیام تک میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے صلح امام حسن علیہ السلام ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا نجیب الحسن صاحب آئیے ان سے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں السلام علیکم مولانا صاحب
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
امام حسن علیہ السلام کا جب بھی تذکرہ آتا ہے ان کی شخصیت کے ساتھ صلح کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے جو انہوں نے امیر شام کے ساتھ کی یہاں پر ایک سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر امام حسن علیہ السلام کو صلح کرنی تھی امیر شام سے تو شروع میں ابتدا میں انہوں نے جنگ کا ارادہ کیوں کیا بالآخر آخر میں ان تمام باتوں کا نتیجہ تو وہی صلح تھی جس کو انہوں نے انجام دینا تھا یہ کام پہلے انجام دے لیتے یہ کام انہوں نے بعد میں کیوں کیا
جی ایک سوال یہ یقیناً اٹھتا ہے کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا متمع نظر اگر یہ تھا کہ صلح کرنا ہے تو ابتدا ہی میں صلح آپ نے کیوں نہیں
جی
کر لی
بالکل
تو اس کے لیے ہمیں اس تاریخی فضا میں جانا پڑے گا جو اس وقت وہاں پر چل رہی تھی کوفے میں آپ اس چیز کو اگر ملاحظہ کریں اور دیکھیں کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد جو حالات ہیں وہ حالات اس طرح کے ہیں کہ امام اپنی شہادت سے پہلے چونکہ حکیمیت کا واقعہ ہوا جنگ نہروان اور جنگ نہروان کے بعد اب صورت یہ ہے کہ امام چاہتے ہیں کہ صفین میں جو کارشکنی ہوئی اور ایک طرح سے دھوکے میں رہے لوگ اور بے وقوف بنے ان کو اب تھوڑا سا احساس ہوا کہ ہم نے قرآن کے نام پر قرآن ناطق کے ساتھ کتنا بڑا ہم نے دھوکہ کیا اور ایک بڑا معرکہ جو ہم سر کرتے کرتے رہ گئے اس کے کتنے نقصانات ہیں تو
یعنی اس کا ازالہ ہونا چاہیے اب
اس کا ازالہ ہونا چاہیے اور ہمیشہ ایسا ہوتا رہے کہ ایک جنگ اگر ہوتی ہے اور مختلف وجوہات کی بنیاد کے اوپر اگر کمانڈر جنگ کا سپہ سالار اور رہبر یہ دیکھتا ہے کہ ان وجوہات کی بنیاد کے اوپر ان مسائل کی بنیاد کے اوپر ہم کامیاب ہوتے ہوتے رہ گئے تو اس کو ازالہ کرنے کی کوشش کرتا ہے امام بھی دوبارہ ایک تجدید قوا کر رہے تھے آمادگی آپ نے دوبارہ ظاہر کی کہ لوگوں کو دوبارہ تیار کریں چونکہ ابھی بھی آپ کا مد مقابل اسی طرح سے ہے یعنی جن نظریات کو وہ حامل تھا ابھی بھی وہی نظریات ہیں جس طرح سے اسلام کو نقصان پہنچا رہا تھا ابھی بھی اس کا متمع نظر یہی ہے تو در حقیقت امام کی جو شہادت ہوتی ہے ایسے موقع پر ہوتی ہے کہ ایک لشکر کی امام تشکیل دے رہے ہیں
ہاں لشکر کی تیاری ہے
تیاری
ہے ادھر امام کی
اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ امام کی طرف سے تھا ادھر یہ ہوا کہ امام کی شہادت کے بعد 18 دن کے اندر 18 دن ابھی گزرے ہیں کہ امیر شام نے پوری جنگ کی تیاری کر لی تو اس طرف سے امام جو سوچ رہے تھے ادھر سے دشمن بھی اس طرح سے سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھی یہ تو فرزند رسول ہیں امام علی کے سب سے بڑے بیٹے ہیں اس کو معلوم ہے کہ ان کا جو نقطہ نظر ہے وہی ہے جو امام کا ہے باپ اور بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہے اگر ہمیں ایک ایسا موقع ہم نے ان کو دے دیا فراہم کر دیا کہ جس سے ان کی حکومت کے پائے مضبوط ہو گئے تو کل ایک بڑی مصیبت ہمارے لیے ہونے والی ہے امیر شام یہ سمجھ رہا تھا لہذا اس نے لشکر تیار کیا اور ترتیب دیا جب اس چیز کی خبر امام کو ملی کہ ادھر سے لشکر کی تیاری ہو رہی ہے اور حملہ ہونے والا ہے تو اب امام کے لیے بھی ضروری تھا کہ مقابلے پر ظاہر ہے کہ جب جنگ ہے تو جنگ کے مقابلے پر تیاری کرنا ضروری ہے امام نے بھی اپنے لشکر کو تیار کرنے کا حکم دیا اور امام کا لشکر بھی تیار ہوا وہ اس لیے بہرحال اگر کوئی انسان یہ بھی نظر رکھتا ہے کہ مثلا صلح ہونا چاہیے لیکن سیاست یہ کہتی ہے اور اگر ظاہری تدبیر بھی اس کے اندر ہے تو یہ کہتی ہے کہ صلح کے ساتھ ساتھ جوانب پر بھی نظر رکھی جائے ممکن ہے کہ ایک انسان صلح مثلا کرنا چاہتا ہو لیکن گویا آستین کا خنجر یعنی پوچھ سے وہ خنجر لگائے پوچھ سے وہ ایک حملہ کرے ہو سکتا ہے ظاہری طور پر وہ صلح کر رہا ہے لیکن حقیقت میں اس کا ارادہ کچھ اور ہے تو جہاں آپ دیکھیں کہ دو ممالک میں صلح بھی ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ حکومت سارے अपनी सारी फोर्स को कहती है तुम चुपचाप बैठ जाओ, हमें मसलन सुलह करना है, किसी
जी
को असलहों को डाल दो, हमें सुलह करना है। फौज से नहीं कहा जाता कि तुम तैयारियां मत करो, तुम मशकें मत करो, सुलह करना है।
स्वामी सोली
तो
करना।
हो सकता है कि नतीजा कुछ और हो। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में अगर आप गौर करेंगे और इस सुलह के असबाब इलल को देखेंगे, तो पहले मरहले में इमाम ये नहीं चाहते हैं कि सुलह हो जाए। पहले मरहले में यही है कि जब लश्कर आया है तो इसका मुकाबला हो, इसीलिए फ़ौज की तरतीब दी आपने, और कैस बिन साद को लिया, और उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास को लिया, और आपने ऐसे लोगों को अपना कमांडर बनाया कि जिनकी एक हैसियत है
माशरे में
माशरे में।
एक मकाम रखते हैं।
तो दर हकीकत इमाम जो साबात तक पहुँचे हैं और मदायन की तरफ आपने लश्कर भेजा है, ये था कि सामने से एक लश्कर आ रहा था, लिहाजा इमाम ने अपना रद्द अमल। लेकिन जब अंदर से लश्कर टूट गया, और लश्कर वही लश्कर जो जंग के लिए था, जब वो कह रहा है कि हम जंग नहीं करते, तो ये सुल सेकेंड ऑप्शन के तौर पर सामने आया कि अब दूसरे मरहले में इमाम ने उसको यानी अंजाम दिया है। पहले मरहले में ये था कि जो सामने से अमल हो रहा है, हमारा अमल उसके मुताबिक होना चाहिए, रद्द अमल वही होगा जो सामने से हमारे सामने एक चीज़ आ रही है उसके मुकाबले पर वही चीज़ होगी।
अच्छा, यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी तब्दील नज़र आती है कि इमाम ने जंग का इरादा, जैसे कि आपने कहा, जंग का इरादा उस वक्त किया जब उसने जंग के लिए पेशकदमी की
जी
अमीर शाम ने।
हमेशा हमने
अच्छा, उसके बाद फिर जब सुलह की नौबत आई, तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि एक इल्लत ये भी थी कि लश्कर में टूट फूट हो गई, लेकिन उसकी भी पेशकदमी जो की है, पहल जो की है, वो अमीर शाम की तरफ से हुई है।
ये यकीनन अमीर शाम, जब देखें इसमें यह है कि उलमा इसको बयान करते हैं, तारीख में आप देखें कि वो ये चाहता था कि हम कम से कम खर्च पर यानी अपनी तवानाई को कम से कम खर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा नतीजा हासिल कर लें,
बिल्कुल
वो ये चाहता था। इमाम हुसैन, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम मुज्तबा ने भी जो सियासत अपनाई, जो हिकमत अमली अपनाई, उसको उसकी सियासत में कामयाब नहीं होने दिया, यानी मुकाबला किया बिलमिसल।
बिल्कुल
जिस वक्त वो जंग करना चाहता था, इमाम ने भी जंग, जब वो सुलह करना चाहता था, कहा कि हम सुलह करेंगे, लेकिन इस सुलह से वो नतीजा जो तुम हासिल करना चाहते हो वो तुम्हें हासिल नहीं हो सकता है।
अच्छा, यहाँ पर शराइत की बात आती है कि सुलह की जो शराइत थी वो भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने खुद तय की हैं,
जी
क्योंकि तारीख दान लिखते हैं कि उसने एक सादा कागज़ भिजवा
सादा
दिया
कागज
था
उसने
कि
भेज दिया।
मैं जो लिख के देंगे मैं उसको कबूल करने को तैयार हूँ। वो कौन सी ऐसी शराइत थी जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने वहाँ
जी
पेश की?
यानी अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सुलह के नताएज और उसके समरात को हम जानना चाहते हैं कि क्या फ़ायदा हुआ, तो हम इन शरायत पर गौर करें कि इन शरायत को अगर हम देखेंगे तो हमें महसूस होगा कि यकीनन अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ये सुलह न करते तो करबला जिस अंदाज में सन 61 हिजरी में जलवा फिगन नज़र आती है, उसका वो वजूद, बारिज वजूद, मुमताज़ वजूद, इतना निखार उसके अंदर ना पैदा होता, इस अंदाज़ में रूनमा ना होती करबला। अब आप देखें कि वो शुरूत क्या थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम दर हकीकत जब माविया अमीर शाम ने आपके सामने ये सादा कागज़ भेजा, तो आपकी जो बुनियादी फिक्र है वो ये कि उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इंतशार ना हो, इख्तलाफ ना हो, आपस में झगड़ा ना हो, कई चीज़ों से बचाना चाहते हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि अगर एक शख्स ऐसा है जिसको इक्तदार की हवस है, जिसको हुकूमत पे रहना ही रहना है और बगैर इसके वो नहीं रह सकता
नहीं रह
है,
सकता।
उसको इक्तदार के नशे में मसलन इतना चूर है कि कुछ को नज़र ही नहीं आ रहा है, तो आपने उन शरायत को सामने रखा कि जिन शरायत के ज़रिए से माशरे की बेहतरी और फलाह हो सके। इमाम का असल काम यही है कि इमाम माशरे को उन खतूत की तरफ लेके जाता है कि जो खतूत परवरदिगार की बंदगी पर जाकर मुंतही होते हैं, हुकूमत रहे ना रहे। इमाम को ऐसा करना है कि अब्दो माबूद के
को
रिश्ते को
जोड़ना,
वाज़े करना है, उसको
हाँ,
जोड़ना है,
मजबूत
उसको
करना।
मजबूत करना है। लिहाजा अब इस रिश्ते को इमाम किस तरह से जोड़ सकते हैं। इमाम ने सबसे पहली बात जो उसके सामने रखी कि अगर माशरे को अगर कोई इदारा कर रहा है तो माशरे को उन उसूलों के अलावा इदारा नहीं किया जा सकता जो उसूल कुरान के हैं। लिहाजा पहली जो सुलनामे के शरायत में पहली शर्त है वो ये कि मैं कुछ दिन के लिए इस हुकूमत को अमीर शाम के हवाले करने के लिए वक्ती तौर पर आमादगी का इजहार करता हूँ, लेकिन पहली शर्त यह है कि ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करे।
अमल करेगा।
पहली शर्त, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करेगा। देखिए ये तमाम शुरूत ऐसी हैं कि जिनके ऊपर मुसलसल गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन हम
हाँ बिल्कुल।
बतौर
और पहली शर्त भी बड़ी बारीक है कि उसमें ये कहते हैं मैं हुकूमत को ना कि खिलाफत को, हाँ कि वो मुसलमानों की खिलाफत के इसको उसके हवाले नहीं,
जी
इमाम ने इन अल्फाज को
यानी
इस्तेमाल नहीं किया।
बिल्कुल बहुत अच्छी बात है आप के उससे इस्तफादा करते हुए आपकी गुफ्तगू से हम कह सकते हैं कि बाज़ वो लोग जो समझते हैं कि मसलन इमाम ने क्या कर दिया, इमाम ने इमामत उसके हवाले नहीं की है,
जी हाँ
खिलाफत हवाले नहीं किए। मालूम है कि खिलाफत ये परवरदिगार का एक मनसब है जो किसी इंसान के बस में नहीं है कि किसी को
बिल्कुल
हवाले कर दे, ये अहद इलाही है। लिहाजा आपने उस हुकूमत को कि जो इदारा करने के लिए माशरे की जो एक मशीनरी है, कहा कि ये इसका इख्तियार तुम्हारे हाथ में है, लेकिन शर्त यह है कि तुम कुरान और सुन्नत के मुताबिक
मुताबिक अमल
अमल
करो।
करोगे, पहली शर्त। दूसरी शर्त इमाम के लिए उस वक्त बहुत एक हसास दौर था इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए, कि उस दौर में अमीर शाम की पूरी कोशिश ये थी कि शिया जो बुज़ुर्ग शख्सियतें हैं जिनकी एक मुमताज़ हैसियत है माशरे में, उनको कुचल रहे थे, जैसे हजर बिन अदी, जैसे हमक खजाई, इस तरह के मुख्तलिफ अफराद थे कि जो निशाने पर थे। आप उन अफराद को कि जो गोया गदीरी तर्ज तफक्कुर को अपनाए हुए थे, उन लोगों को महफूज देखना चाहते थे, ताकि इनकी बेस, इनकी बुनियाद के ऊपर करबला के मरहले को बहुत ही आगाहाना तौर पर सर किया जा सके। उसके लिए ज़रूरी था कि जो तशय्यो की फ़िक्र है, इमामिया की असास और बुनियाद है, उसको बाकी रखा जा सके। लिहाजा बहुत ज़रूरी था कि आप शियों की जान और माल की हिफाजत किसी भी तरह से ये अपने अपने यानी गोया इस तरह से करें कि शिया महफूज रह सके, उनकी जान और माल महफूज रह सके। और ये इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने इस शर्त के ज़रिए से किया कि जिस वक्त कोई और चारा ही नहीं रह गया था मगर ये कि ये शर्त रखें, और इसके साथ ये भी दिखा दें कि देखो ये कितना पाबंद है अपनी शर्त का,
ये तो
ताकि
एक असल असास शर्तों की यही थी। हम यहाँ पर थोड़ा सा तवक्कुफ करना चाहेंगे। नाज़रीन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे आज की बहस का मौजू है सुलह इमाम हसन अलैहिस्सलाम। आइए अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मौलाना, सुलह की दो शर्तें आपने
जी
बयान की,
जी
उसको मज़ीद और क्या शर्तें उसके अंदर मौजूद थीं?
इमाम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने जो बुनियादी शर्तें रखी कि मसलन पहली शर्त कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल होगा, दूसरी शर्त हमारे शियों को तुम टच नहीं करोगे, उन्हें परेशान नहीं, हरासा नहीं करोगे, उनकी ज़िंदगी महफूज रहेगी, ताकि कोई जब तक एक ऐसा वक्त नहीं आता है कि कोई एक मज़बूत स्ट्रेटेजी, एक मज़बूत लायमल तैयार नहीं होता है, तब तक कम से कम इतना किया जा सके कि शियों की ज़िंदगी महफूज रह सके।
अच्छा, ये शरायत भी दर हकीकत उस कयाम के मुकाबले में आने वाले सुलह को खुद वाज़ा कर रही है यहाँ
मज़े
पे
करें
कि वो इस्लाम की शरीयत की पाबंदी नहीं करता था, हम उसको मुअज़्ज़फ़ कर रहे हैं कि वो इस्लाम की पाबंदी करे।
जी, एक
वो शियों पे सितम करता था, जुल्म करता था, हम उसको जो है वो
एहसन
पाबंद कर रहे हैं कि वो जुल्म ना करे।
जुल्म ना करें। नहीं, उसके अलावा एक और भी चीज़ है, दो चीज़ें हैं, एक तो वो ना करे, दूसरा है कि हम ये भी आज़ादाना तौर पर जो उसने सुलह का एक सफ़ेद कागज़ हमारे सामने भेजा है, हम अपनी शर्त उसके सामने लिख रहे हैं, अब तुम देखोगे वो क्या अपने अहद व पैमान में कायम है कि नहीं है,
हाँ वो तो दूसरे
इससे
स्टेप पे के वो
दूसरे
उसको
स्टेप में
देखते हैं, वो उसको पास रखता है अपने अहद का, अपने वादे का, या नहीं रखता।
लिहाज रखता है कि नहीं
जी
रखता
हाँ
है अपने वादे का। तो तीसरी शर्त फिर जो इमाम ने रखी वो ये कि अमीर शाम की तरफ से, बहुत अजीब है सारे शरायत पर अगर गौर करें, अमीर शाम की तरफ से ये साजिश नहीं की जाएगी कि इमाम मुश्तबा अलैहिस्सलाम या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि इनकी जान को ख़तरा हो, यानी
जान
कत्ल की साजिश नहीं की जाएगी,
बिल्कुल
यानी बिल्कुल गोया एक दायरा, एक सुलह की सूरत में एक मैदान जंग है जिनके खतूत को, हमेशा ऐसा होता है कि मैदान जंग तलवार के साए में, तलवार की घनगरज, नैज़ों की चमक, इसमें एक मैदान कारजार उभर कर सामने आता है। ये एक मंजिल है कि इमाम मुज्तबा कलम की गर्दिश के जरिए से महसूर कर रहे हैं, एक हिसार बांध रहे हैं कि वहां पर आपने एक मारका सर किया है। और बिल्कुल अमीर शाम को और उन लोगों को कि जिन्होंने मजबूर किया है सुलेमान हसन पर, दिखा रहे हैं कि हम कितना आजाद हैं और तुम कितने मजबूर हो, जहां हम लेके जाना चाह रहे हैं तुम वहां आ रहे हो। लिहाजा इमाम ने ये जो शर्त लगाई कि कोई कत्ल की साजिश नहीं की जाएगी, ना मेरी ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। उसके बाद कहते हैं कि चौथी शर्त ज़ाहिर ये थी कि मेरे बाबा के ऊपर जो सब्बो शत्म किया जाता है, जो लान तान किया जाता है, इसको ख़त्म किया जाए। उसके बाद फिर एक और शर्त यह है कि वहाँ पर एक जगह थी दराबगर्द, शहीद मुतारी ने भी इसको बयान किया है, उलमा ने लिखा है कि यहाँ से खराज आता था। कहा कि इसका खराज हमारे शियों में खर्च होगा, और उसके अलावा तकरीबन 50 लाख दिरहम जो कूफे के बैतुलमाल में हैं उन्हें भी हमारे शियों के दरमियान में खर्च किया जाएगा। यानी इकतसादी तौर पर मईशत के हवाले से आपने वाबस्ता नहीं रखा अपने शियों को कि वो अमीर शाम की हुकूमत से मसलन जुड़े रहें या उनसे कोई वाबस्तगी का इजहार करें, नहीं, मुस्तकिल रखा है कि ये किया जाए ताकि वो शिया, और ये बहुत बुनियादी है कि इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम कम से कम यानी इम्कानात और वसायल को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा नतायज को
हासिल
ले रहे
करना
हैं, हासिल
चाहिए।
कर रहे हैं। चूँकि जंगे जमल में, जंगे सिफीन में, जंगे नहरवान में बहुत सारे शिया जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के चाहने वाले थे, आशिक थे, सहाबी थे, कत्ल हुए, शहीद हुए, बेवाएं हैं, यतीम बच्चे हैं, कि सरपरस्ती कौन करेगा। ये लोग यानी एक तरह से इनका सारा इन्हिसार इसी के ऊपर है कि कहीं से कोई मदद हो। अब ऐसे वक्त में इनकी मदद इमदाद रसी करना, इनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना, ये यकीनन एक ऐसा ही शख्स कर सकता है अजीज, जिसके लिए मसलन कुरान करीम ने कहा ना कि पैगंबर इस्लाम की शान ये है, हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ और रहीमा, ये कि पैगंबर तुम्हारे नफ्सों से ज़्यादा तुम्हारा ध्यान रखता है। यानी ये जो पैगंबर की शान कुरान करीम ने बयान
मफहूम इसका
की है,
ही है।
मफहूम इसका ये है। तो इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम गोया इसी को बयान कर रहे हैं कि अगर हमारे शिया कुछ मसाइल में गिरफ्तार हैं, कुछ मुश्किलात में गिरफ्तार हैं, तो उनको किस तरह से निकाला जा सकता है, लिहाजा इसकी तरफ आपने तवज्जो की। उसके अलावा इमाम ने इस बात को पेश नज़र रखा कि सबसे जो बुनियादी चीज़ है जिसको हम यहाँ पर देख सकते हैं इन शरायत में, वो ये कि अपने बाद अमीर शाम किसी को अपना जानशीन नहीं बनाएगा, अपने बाद किसी को अपना जानशीन, और उसके बाद खिलाफत इमाम हसन अलैहिस्सलाम तक आएगी, और उसके बाद फिर इमाम हुसैन
इमाम हुसैन
अलैहिस्सलाम।
पे आ जाएगी।
ये एक बुनियादी चीज़ थी जो इन शरायत में इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने जिन चीज़ों का ख्याल रखा और इन शरायत में गोया महसूर कर दिया। अब देखेंगे जितनी भी शरायत रखी हैं, अब ये बात का मसला है कि गोया एक नकाब पड़ी हुई थी अमीर शाम के रुख पर, इमाम ने इन शरायत को रख के नकाब चेहरे से उलट दी कि तुम देखो कि ये कैसे लोग हैं। उस ज़माने में जज़ीरतुल अरब में बहुत अहम था, बहुत बड़ी चीज़ थी कि यानी अहद व पैमान की एक अहमियत समझी जाती थी,
हाँ बिल्कुल,
और वो लोग किसी भी चीज़ से गुजर सकते थे, लेकिन अहद व पैमान था उनके लिए, जंगें हो जाती थी कि हमने अहद किया, हमने पैमान किया। उस दौरान गोया इमाम इन सुलह के शरायत को रख कर इस मुआहदे के ज़रिए से बता रहे हैं कि देखो जिन चीज़ों को तुम्हारी फितरत के अंदर सबसे बारिज तौर पर देखा जाता है, ये तो उसका भी पास लिहाज
ख्याल नहीं
करने
रखते
वाले नहीं,
बिल्कुल।
उसके भी ख्याल रखने वाले नहीं हैं। और ऐसा ही हुआ कि इमाम ने जिन जिन शरायत को बयान किया था, तमाम के तमाम शरायत अमीर शाम ने उनका पासो लिहाज नहीं किया, उसके खिलाफ अमल किया। इमाम ने
बिल्कुल,
कहा था जानशीन न बनाना, उसने
जानशीन
यजीद
बनाए,
की वली
खराज जो मिलना था वो
हाँ
रोक
वो
दिया,
रोक दिया, उसके अलावा सब्बो शतम का सिलसिला
वो वैसे ही जारी
जारी
रहा।
रखा।
यहाँ पर एक चीज़ और जो हमारे जहन में आती है कि खुद इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इस सुलह के कुछ असबाब बयान किए हैं, कुछ इल्लतें बयान की हैं, हमें तारीख़ में इसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं।
जी यकीनन इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने भी मुख्तलिफ मकामात पर जब लोगों ने पूछा है, इमाम ने बयान किया, बाज़ आपके चाहने वाले आए आपसे कहा कि मौला ये आपने सुलह कर ली जबकि हमें जंग करना चाहिए थी, और सुलह के ज़रिए से एक ज़िल्लत का एहसास हो रहा है, तो मौला ने चाहने वाले से कहा कि मैंने तुम्हारी हिफाजत के लिए, तुम्हारी बका के लिए ये सुलह की है। फिर हालात ऐसे थे कि उस वक्त बाज़ ऐसे लोग इमाम की फ़ौज के अंदर दाखिल हो चुके थे कि जिसमें मसलन मदाइन के वाली के सिलसिले में मिलता है कि उसका बेटा जिसका नाम ज़ाहिरन साद है, वो कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि दुनिया व आखिरत की माल व सरवत को तुम अपना सको और ये सारी नेमतें तुम्हारे पास हों, तो एक काम करो कि बहुत अच्छा मौका है, जंग हो रही है और लश्कर अमीर शाम का आमादा है, इमाम मुश्तबा अलैहिस्सलाम के लश्कर में मुख्तलिफ लोग हैं, उनके अलग अलग ज़हनियतें हैं, अलग अलग रुझानात हैं, कोई जंग करना चाहता है कोई नहीं करना चाहता, सुस्त ज़यीफ़ लोग हैं, बेहतरीन मौका है इमाम मुश्तबा को पकड़ के तुम माविया के अमीर
हवाले
शाम के हवाले कर दो। ये इस ख़तरनाक सूरत हाल को ये चीज़ दिखा रही है कि इमाम मुश्तबा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वल्लाही लो कातल तुम, फरमाते हैं लो कातल तो अगर मैं अमीर शाम से जंग करता रहता लअखदु बिउनुकी हत्ता यदफउनी इलैह, तो ये लोग मेरी गर्दन पकड़कर अमीर शाम के हवाले कर देते। चूंकि मसला अमीर शाम का एक ख़ास जो यहाँ पर है कि क्यों कर देते, उसके पीछे एक जज्बा है जो बहुत ख़तरनाक हुक्म फरमा है, वो ये कि जब अबू सुफियान फ़तेह मक्का के बाद आया था तो तारीख़ में मिलता है कि कांप रहा था, हाथ उसके कांप रहे थे, लरज़ रहा था, बंधा हुआ था, कैदी था, कि अब हुजूर क्या फ़ैसला करते हैं कि जंगों में आया, मुकम्मल तौर पर शिकस्त खाई, और इस वक्त सारी इसने सारी करतूतें इसकी ये थी कि गोया इस्लाम को सरनिगू कर सके, लेकिन इस्लाम का परचम सरबुलंद रहा, अब क्या है? तो रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत का मुजाहरा करते फरमाया था कि अंतुम तुलका, तुम आज़ाद हो, मैंने तुम्हें
आज़ाद
आज़ाद कर दिया। ये चीज़ यानी कहीं ना कहीं कुरैश के अंदर ये ख़तरनाक कीने की और एक तरह से अंदर दिल में बात रख लेना, ये ज़ाहिर है आप देखें कि इस तरह से जंगें होती थी, 40 40 साल तक जंग करते थे, कि जुमला लग जाता था। तो उधर से भी अमीर शाम ये सोच रहा था कुछ ऐसा हो कि इमाम मुश्तबा को मसलन कैद बना के हवाले कर दिया जाए और हम उसका जवाब दे सकें कि जब हमें,
यहाँ पे माजत चाहूंगा, हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया
जी,
जी।
कि हम मसलन उसका जवाब दे सकें कि अंतुम तुलका, तो हम भी मसलन कह देंगे कि हमने भी आज़ाद कर दिया। तो इमाम मुश्तबा अलैहिस्सलाम इसके अलावा फिर जो बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि इन्नी सल्लमतुल अम्र, क्यों? लअन्नी लम अजिद अंसारन, मेरे पास लोग साथी नहीं थे, लेकिन लो वजद तो अंसारन, अगर मेरे पास लोग होते मैं सुबह शाम इससे जंग करता। एक बहुत बुनियादी चीज़ है। फिर फरमाते हैं मसलन फसाल है तो बकिन अलाशियत है ना खासा, मैंने इसलिए ये सुलह की कि मैं अपने शियों को महफूज देखना चाहता था।
बिल्कुल, अपने शियों की हिफाजत की खातिर इमाम अलैहिस्सलाम ने सुलह की, और यही इमामत जब आगे बढ़ती है तो अपने शियों और दीन के दिफा की खातिर जंग के मैदान में नज़र आती है। बहुत शुक्रिया मौलाना, आपने कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।